शांति। तो अभी का विषय क्या है? मैं सजनी शिव साजन की। तो पहला क्वेश्चन है, क्या ये वाक्य मैं सजनी शिव साजन की एक्सेप्टेड है, स्वीकार है? माताओं बहनों को तो इजी है, भाइयों को स्वीकार हुआ है कि मैं सजनी शिव साजन की? हाँ, नहीं होता है स्वीकार? हाँ, अभी वो पता चलेगा स्वीकार अगर होता है तो क्यों, और अगर स्वीकार नहीं होता है तो क्यों। स्वीकार होता है तब जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सोल कॉन्शियस वाला होता है, और स्वीकार नहीं होता है तब जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बॉडी कॉन्शियस वाला होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर दो, जिसने भी कहा स्वीकार नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करो तो फिर स्वीकार होगा। और जिन्होंने कहा स्वीकार है उन्होंने ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज किया हुआ है ना? तो मैं हूं सजनी शिव साजन की। शिव साजन कैसा है और सजनी कैसी है, इसका बहुत सुंदर वर्णन अभी अभी जो हमने गीत सुना उसमें बहुत सुंदर तरीके से वर्णन आया है। क्योंकि आज भी बाबा ने ये बात कही कि कई बच्चे कहते हम तो बाबा के बच्चे बन गए ना, पर बाबा के बच्चे बन जाना ही इनफ नहीं है, बच्चे बन जाना ही काफी नहीं है। बच्चे बनने के बाद देखो, हम लौकिक में रहते हैं तो पता है माँ बाप जब बच्चों को जन्म देते हैं तो क्या चाहना रखते कि बच्चा ऊंच पद पाए। तो कितनी आप उसके लिए मेहनत करते हो, बच्चा तो करता ही है, लेकिन बच्चा चलो चूंकि अभी छोटा है उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन माँ बाप को समझ है तो बचपन से ही उसका समय सफल होना चाहिए। ऐसी हम उसके पीछे मेहनत करते रहते, थोड़ी समझ आने के बाद तो वो खुद ही मेहनत करता है, लेकिन जब छोटा होता है, जब खेलने के दिन होते हैं तो कई बार बैलेंस नहीं रख पाते हैं कुछ बच्चे पढ़ाई में और खेल में, तो फिर माँ बाप उनके लिए मेहनत करते हैं। क्योंकि बच्चा होना काफी नहीं है, लेकिन बच्चे का पद भी ऊंचा होना चाहिए। और तब आज बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं बच्चे तो बन गए ना बाबा के, बच्चे बेशक बन गए और डेफिनेटली स्वर्ग के अधिकारी भी बन गए, और स्वर्ग माना दोनों, चाहे तो सतयुग में आ जाओ और चाहे तो त्रेता युग में आ जाओ, लेकिन वहां पर भी तो पद है, राजधानी है ना पूरी, राजधानी माना ही चाहा क्या होगे, पद होंगे, हायरार्की। कई बार ब्रह्मा कुमारी में लोग आते हैं ना तो क्वेश्चन करते, क्योंकि हम कहते हैं कि ये विश्वविद्यालय है तो पूछते फिर क्या हायरार्की है यहाँ पे, हाँ भाई कौन सा पद बड़ा कौन सा पद छोटा और उसके हिसाब से किसकी कितनी सैलरी, ये सब पूछते हैं। परंतु अभी तो सब क्या चल रहा है, ईश्वर के अंदर में चल रहा है, और चूंकि ईश्वर के अंदर में चल रहा है, ईश्वर वो परमपिता परमात्मा सर्व का पिता है, तो उसके लिए सारे बच्चे हैं, और इसलिए नो हायरार्की। लेकिन जब हम सतयुग में जाएंगे हायरार्की तो शुरू हो जाएगी वहां पे, तो उच्च पद किस आधार से होगा? क्वालिफिकेशन के आधार से। आज भी ये बच्चे 10th 12th पास करते हैं तो मेडिकल में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंजीनियरिंग में मिलेगी या नहीं मिलेगी, आईआईटी में मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस आधार से कितना स्कोर किया है, मार्कशीट देखी जाती है ना, क्वालिफाइड भी हो या नहीं। और कई बार तो वो मार्कशीट भी अच्छी है लेकिन अलग से एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम अलग से नहीं, हम लेंगे एग्जाम और उसमें अगर आप क्वालिफाइड हुए तो आपको एडमिशन होगी। तो इसलिए सिर्फ बच्चे बन जाना काफी नहीं है, क्योंकि कई बार बाबा ये भी प्रश्न पूछते हैं, हम बच्चे तो है ही, और हमने जैसे कि आप पहले ही दिन जब आपकी भर्ती शुरू हुई उसी दिन बाप दादा का मिलन भी था और उसी दिन बाबा ने शिवरात्रि का झंडा भी फहराया। हमारे ब्राह्मण परिवार के हिसाब से हम शिव जयंती कहते हैं। क्यों क्यों जयंती कहते हैं? बर्थडे, क्योंकि इसी दिन परमात्मा, परमात्मा का धरती पर अवतरण हुआ अर्थात उनका दिव्य जन्म हुआ, और चूंकि वे अवतरित हुए दादा लेखराज के तन में और तुरंत उनको बना दिया उन्होंने ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का जन्म हुआ। और ब्रह्मा का जन्म होते ही कई सारे आकर्षित हो गए तो ब्राह्मणों का जन्म हो गया, और इसीलिए हम क्या करते हैं शिवरात्रि पर, शिव जयंती पर एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई देते हैं। लेकिन लौकिक में जब शिवरात्रि होती वो शिव जयंती शब्द यूज नहीं करते हैं, वो शिवरात्रि शब्द यूज करते हैं, महाशिवरात्रि शब्द यूज करते हैं। और किसके साथ एसोसिएट करते हैं? कि कहते हैं इस दिन, वो भी कहते हैं कि इसी दिन जन्म हुआ, शास्त्रों में ये आता है कि शिव का अवतरण ब्रह्मा की भ्रुकुटि से हुआ है। तो एक बात ये भी आती है और दूसरी बात ये भी आती है कि शिव का पार्वती से विवाह इस दिन हुआ। हो सकता है किसी को प्रश्न भी आता है कि बर्थडे भी और विवाह भी, है ना? तो डेफिनेटली कई बार बर्थडे जिस दिन होता है उसी दिन आगे चलकर शादी उसी दिन हो सकती है, नहीं हो सकती है? हो सकती है ना। तो लौकिक में, भक्ति मार्ग में इसको शिव पार्वती के विवाह के साथ भी जोड़ते हैं, अर्थात ही जब जब जयंती के रूप में कहा तो हम कहते हैं बाप और बच्चे, लेकिन अगर कहा कि शिव पार्वती के विवाह का दिन है तो क्या हो गया, साजन और सजनी बन गए, है ना? क्योंकि बात क्या है, जब बाप बच्चे कह रहे हैं तो बाप है परमात्मा और बच्चे हैं आत्मा, और जब साजन सजनी कह रहे हैं तो साजन है परमात्मा और सजनी है आत्मा। और बाबा कहते हैं वैसे भी दुनिया में भी जब शादी होती है तो कैसे होती है, वर को अपने घर में वधु को लेने जाने के लिए आना पड़ता है, वधु खुद नहीं जाती है, वर आता है वधु को लेने के लिए, और वर चूंकि वर वधु को लेने आया है तो वधु पूर्ण श्रृंगारित होती है, 16 श्रृंगार करती है ताकि वर को वो भा जाए, उसके दिल में उसकी छवि छप जाए, तभी तो जोड़ी आगे की लाइफ अच्छी चलेगी ना। इसलिए पहली ही मुलाकात ऐसी होती है कि जिसमें वो संपूर्णता को प्राप्त की हुई है दुनियावी रीति से, 16 श्रृंगार किया हुआ है, और फिर वर उसको लेके जाता है। बाबा भी हमें प्रश्न पूछते हैं, मैं तुम्हें घर लेने के लिए, ले चलने के लिए आया हूं, और जब मैं लेने के लिए आया हूं वहां तो वर एक वधु को लेने आता है, यहाँ तो पूरी भीड़ है, और इसलिए बाबा प्रश्न करता है कैसे चलना है। साजन के साथ सजनी बन के चलना है या बाराती या घराती बन के चलना है, क्योंकि घराती तो बाराती से भी पीछे है, बाराती फिर भी साजन सजनी के पीछे, घराती तो और पीछे है। तो बेशक हम बच्चे बन गए हैं, लेकिन बाबा अब हमारा, क्योंकि वैसे भी हमने भक्ति मार्ग में गाया, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव, त्वमेव सर्व मम देव। एक एक क्या गिनाऊं मैं, जितने भी संबंध दुनिया में गिने जाते हैं वो सारे के सारे संबंध मेरे तुझ एक से है। और इसलिए उसको बाप के रूप में भी याद किया तो भी चलता है, उसको साजन कह दिया तो भी चलता है। तो बाबा हमेशा प्रश्न जब घर ले चलने की बात कहता है तो इसी रूप में पूछता है, सजनी के रूप में, कि कैसे चलना है, सजनी बनकर साथ में चलना है या बाराती या घराती। तो क्या है सबका उत्तर? सजनी बनकर चलना है। तो पहले ही हमने बताया लौकिक में भी सजनी साजन के साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार करती है, पूरे 16 श्रृंगार से अपने को सजाती है। और लौकिक में भी ऐसा होता है कि भले अभी वधू होने वाली वधू अपने माँ बाप के घर में है और वर भी अपने घर में है, लेकिन जब तय हो चुका है कि शादी होनी है, विवाह होना है, फलानी डेट है, तो यहां से भी कुछ सामान वर के घर से, वधू के घर भी है सामान तो मेकअप का, लेकिन वहां से भी जाएगा कुछ, होता है नहीं होता है ऐसा। और इसीलिए इस गीत में बहुत सुंदर वर्णन है कि साजन तेरा कैसा है, ज्ञान का दरिया है, और सजनी कैसी है, क्या बोला अगली लाइन क्या है, शिव साजन है ज्ञान की दरिया, रे सजनी तू धोले चुनरिया। अर्थात सजनी की चुनरिया अभी मैली है, तो सजनी साजन के साथ चले पहले उसको चुनरिया धोनी पड़ेगी, और चुनरिया जब धोने की बात है तो प्रश्न उठता है कि मैली किससे हुई, क्योंकि किस प्रकार का दाग है उस प्रकार का फिर सोप उठाया जाएगा ना, जिस प्रकार का दाग होता है नहीं, इसीलिए बहुत इसमें भी विशेषता होती है, काय का दाग लगा है बताओ तो सही, तो मैं बताऊं कि किससे दो, इसमें केरोसिन, कभी कहेंगे इसको केरोसिन से निकालो, कभी कहेंगे इसमें थोड़ा सा ना नींबू का रस डाल देना, कभी कोई कहेगा थोड़े फिटकरी के पानी में डुबा देना, है ना, अलग अलग तरीके होते हैं ना कि मैला किससे हुआ है, दाग किस प्रकार के लगे हुए हैं। तो ऐसे ही जब बात आ रही है कि चुनरिया मैली तो है नो डाउट, अब धोने का काम तो करना है, पर पता तो चले मैली किससे हुई, तो उसका भी वर्णन आया कि इस चुनरिया पर पिचकारी लग गई, किसकी, काम और क्रोध की, काम क्रोध ने मारी पिचकारी, तो चुनरिया क्या हो गई, खराब हो गई। और फिर बाद में लोभ मोह ने कर दी निकारी, एक तो पहले पिचकारी लग गई तो गंदी हो गई, फिर लोभ मोह ने भी अपना अटैक किया, तो इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, न घर का न घाट का, बेघर कर दे, निकारी माना निकाल देना, घर से ही निकाल लिया मुझे। और जब अहंकार का रंग लगा तो प्रभु प्रेम का जो धागा था वो ही टूट गया। क्योंकि वस्त्र में क्या होता है, धागों का खेल, धागों का ही खेल होता है। तो प्रभु प्रेम का धागा मतलब वो चुनरिया प्रभु प्रेम के धागे से बनी हुई थी, लेकिन धागा टूट गया। और फिर उसके रिजल्ट क्या आए, उसके रिजल्ट आए कि अब डगरिया सूझ नहीं रही है, डगर सूझ नहीं रही है। और डगर मतलब क्या, रास्ता, रास्ता मतलब क्या, हाँ, वो भूखंड जो मुझे गंतव्य तक लेकर जाए, डेस्टिनेशन तक लेकर जाए, मेरे मंजिल तक जाने वाला जो रास्ता है उसको कहते हैं डगर। अब जब मंजिल तक ले जाने वाला डगर ही नहीं सूझ रहा है तो मंजिल कहाँ सूझने वाली है, मंजिल तो और पीछे हो गया ना, वो भी नहीं सूझेगी। तो इससे मैली हुई है और उसके रिजल्ट ये आई है। और आगे वर्णन किया, आलस्य, भय, चुगली और चोरी, इससे क्या हो गई, प्रभु पिया से दूरी हो गई मेरी। जितना जीवन में आलस्य आया, भय आया, चुगली की आदतें बनी रही, चोरी करने की आदतें बनी रही, उतना ही फिर मैं प्रभु पिया से दूर होती गई। और फिर उसके रिजल्ट क्या आई तो वर्णन किया, उसमें रोग शोक मिला, दुख अशांति मिली। और इसके फिर रिजल्ट क्या आई कि मन में भ्रांति पैदा हो गई, अर्थात सत्य से यथार्थ से भटक गई। तू तो भोली नवेली है, हाँ, धोले तू अपने चुनरिया। समझ में नहीं आया, नवेले को नहीं समझ में आता है ना, तब का भोली नवेली तू गुजरियारी, धोले अपनी चुनरिया। तो मैली ऐसी हुई है, धोना है, किसकी मदद लूं। तो बता दिया आबू में शिव साजन धो रहे हैं, और ऐसे धो रहे हैं कि चुनर अति मन भावन बन जाती है उससे। और आगे क्या कहा, कैसे किससे धो रहा है वो, क्या लेके आया है धोने के लिए, गीता ज्ञान की धारा लेकर आया है, ज्ञान योग से सफाई करता है वो। और जब सफाई कर लेता है वो तो 16 कला से भरपूर हो जाती है चुनरिया, चुनरिया 16 कला से भरपूर हो जाती है, धुल गई चुनरिया। तो अभी हमको धोना है अगर, तो पहले कहा कि जिस चीज को धोना है तो मैली किससे हुई वो पता करो, है ना, तो पता चला इससे मैली हुई। लेकिन जिस चीज को धोना है हाथ में, आपके पास हाथ में भी तो हो धुलाई करने के लिए, हाँ है आपके पास चुनरिया, अर्थात समझना होगा ना कि वो चुनरिया कौन सी है जिस पे इस काम क्रोध से लोभ मोह से अहंकार से आलस से भय से चुगली और चोरी से उसका रूप रंग पूरा बिगड़ चुका है, उस प्रभु पिया से प्रेम का धागा तोड़वा दिया है, उससे दूरी बढ़वा दी है, जीवन में रोग और शोक दुख और अशांति आ गई है, भ्रांतियां आ गई है, मन को डगर नहीं सूझ रही है मुझे, तो डेफिनेटली मुझे चुनरिया धोनी पड़ेगी। पर चुनरिया है कौन सी, आत्मा। और सजनी फिर कौन है? सजनी तो चुनरिया ओढ़ती है ना, हाँ? देखो हम दो शब्द यूज करते हैं, और मैली भी कैसे हुई देखो, जब हम शिव साजन के घर से नीचे उतरे थे, साफ और स्वच्छ थे, 16 कला से भरपूर थे, हाँ 16 कला से हम भरपूर थे, एक पॉइंट ऑफ लाइट, फुल इंटेंसिटी वाली लाइट, कंप्लीट प्योर नीचे उतरी, 5 तत्वों वाला देह प्राप्त किया, और वो आत्मा उस देह को प्राप्त करके अपनी क्वालिटीज हर एक्शन के द्वारा एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना आरंभ कर दिया। यही किया। बाबा कहते हैं कि जिस दिन आप सतयुग में, मतलब ऊपर से नीचे उतरते हो, उस समय, उस पहली घड़ी आप 16 कलश संपूर्ण होते हैं, लेकिन नेक्स्ट घड़ी 16 से कम। अभी तुरंत 14 नहीं होते हैं, परंतु कहने का भाव, जैसे ही हम परमधाम घर से नीचे आते हैं, हमारी उतरती कला आरंभ हो जाती है। सिंपल है ना, एक चार्ज बैटरी मोबाइल में डालो और यूज करना आरंभ करो, तो क्या होगी मोबाइल की बैटरी की? उतरती कला होगी ना, और यूज करके करके डिस्चार्ज हो गई, चार्जिंग पे रखा, चढ़ती कला, चार्जिंग पे रखा तो चढ़ती कला, और उस चढ़ती कला के बाद यूज करना आरंभ किया तो उतरती कला। तो संगम पर बाबा से हम कनेक्ट होते हैं, चार्ज होते हैं, तो हम चढ़ती कला में होते हैं। डेफिनेटली संगम माना ही जहां शिव परमात्मा आके आत्माओं को ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करवाते हैं। बहुत जीलिया बॉडी कॉन्शियस के ऑपरेटिंग सिस्टम से, अभी सोल कॉन्शियस का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है। इन दो आंखों से देख रहे थे पहले, आके तीसरी आंख दे दी, कहा इस तीसरी आंख से देखो एक दूसरे को। दो आंख से देखते थे तो नाम रूप गुण कर्तव्य इसमें फंसे रहते थे, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये काला है, ये गोरा है, ये इस देश का उस देश का है, इस जाति का उस जाति का, इस धर्म का उस धर्म का, इसमें फंसे थे। लेकिन जब भगवान ने कहा अब तीसरी आंख को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ, तो तीसरी आंख को ये सब नहीं दिखता है। तीसरी आंख को क्या दिखता है? वो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा दिखती है, और उस आत्मा में वो परमात्मा वाले संस्कार दिखते हैं। कहते हैं ना, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। क्या अर्थ है? कि भगवान जो स्वयं प्यार का सागर है, शांति का सागर है, खुशी का सागर है, सर्वशक्तिवान है, अर्थात शक्ति का भंडार है, वही तो मेरे ओरिजिनल संस्कार है ना, माना बाप वाले ही तो मेरे संस्कार है ना, आत्मा के ओरिजिनल। तो कहा उस आत्मिक दृष्टि से देखो। अगर आत्मिक दृष्टि से नहीं देख रही थी तो सिर्फ ये नहीं देख रही थी कि इंजीनियर या सीनियर, पर ये भी देख रही थी बहुत गुस्सा करता है ये, बहुत गुस्से वाला है ये, बहुत चिड़चिड़ा इंसान है ये, इतना इंकारी, इतना इंकारी, बात मत पूछो। क्योंकि मैं उसके मायावी संस्कारों को देख रही थी दो आंखों से। दो आंख माना हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है ना। देखो शिव जी के इसमें जो पिंडी में तीसरी आंख कैसे दिखाते, ऐसे वर्टिकल। तो ये आंख हॉरिजॉन्टल देख रही, इस भौतिक दुनिया के आधार से देख रही है। भौतिक आंखें भौतिक डायमेंशन को देख रही है, और तीसरी आंख है वर्टिकल। तो जहां ये भौतिक डायमेंशन खत्म होता है, ऊपर है, साइड में नहीं है हमारा परम धाम। कहाँ है हमारा परम धाम? ऊपर है, इसीलिए वर्टिकल में दिखाते हैं आंख। वरना आंख ही दिखाना था तीसरी यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल दिखाते ना, वर्टिकल क्यों दिखाया? वर्टिकल दिखाने का कि हॉरिजॉन्टल में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, भौतिकता है। इसके ऊपर जाने से, इसके पार जाने से ऊपर आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक धाम है, आध्यात्मिक वतन है, आध्यात्मिक घर है। तो वो परम धाम से रहने वाला जब नीचे आता है, तो हमें वो तीसरी आंख देकर कहता है, जब तुम वहां थे ना, उस दृष्टि से देखो। तो वहां तो हम सब क्या थे? प्योर आत्मा थे। जो बाप के संस्कार थे, वही सभी आत्माओं के संस्कार थे। तो आते ही जब यहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करता है, फिर धीरे धीरे उस अनुसार चलते हैं, और हम चढ़ती कला की ओर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और एक दिन आता है हम अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते हैं, और पुनः वो हमें शिव साजन सजनियों को लेके जाता है, विश्राम कराता है, और फिर विश्राम करके हम पुनः नीचे उतरते हैं। और जैसे ही नीचे उतरते हैं, तो बाबा ने ये कहा कि शुरू के दो युगों में आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज है, भले वहां पर परमात्मा हमारे साथ नहीं है, न ही हमें सिखाया जा रहा है कि तुम आत्मा हो और अपने आप को आत्मा समझो, सोल कॉन्शियस होकर गॉड को याद करो, ये कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो अभी परफेक्ट है ना, तो जो परफेक्शन है अभी उसको यूज कर रहे, बैटरी को चार्ज किया ना, तो अभी मोबाइल में यूज करे तो अभी थोड़ी बार बार चार्जिंग लेके उसको यूज करेंगे, बार बार थोड़ी चार्जर पकड़ेंगे और यूज करेंगे। लेकिन नेचुरल वे में चूंकि चार्ज्ड है मोबाइल, काम कर रही है विदाउट इमिटिंग नेगेटिव रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन। शुरू के 50% डिस्चार्ज होते तक अगर मोबाइल की क्वालिटी अच्छी है तो, वरना तो अगर क्वालिटी बहुत लो है तो चाहे बैटरी फुल हो या कम हो, उसने क्या फेंकना है? हार्मफुल रेडिएशन फेंकना है। लेकिन अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है, 50% डिस्चार्जिंग तक नो हार्मफुल रेडिएशन का एमिशन नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही चूंकि हम परफेक्ट स्थिति में उतरे हैं, तो दो युगों तक सोल कॉन्शियस स्टेज नेचुरल है, परंतु चढ़ती कला वाली नहीं, उतरती कला वाली हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज है। लट्टू कभी चलाया है बचपन में? चलाया है। तो जब छोटे थे हमारे सामने कोई बड़ा चला रहा था, और बच्चा तो हर चीज देखता जाता है और वैसे उसने भी करना है, तो जैसे देखा उनको हमने भी उठाया लड्डू हाथ में, फिर देखा वो रस्सी पकड़ते, हमने भी रस्सी पकड़ा, फिर देखा कैसे पकड़ते, वैसे पकड़ा, फिर रस्सी को क्या करते हैं, कील पे रखते हैं, फिर हमने भी रखा, फिर क्या कर रहा है, बोले लपेट रहा है, लपेटते गए लपेटते। अब वो छोटा है अभी तो भले उसने लपेटा, पर जैसे बड़ों ने जो एक्सपर्ट है उस वैसा नहीं लपेट पाया वो, और वो जिस तरीके से भी लपेटा उसने चलाया, और जैसे बड़ों का चलता, मेरा ऐसा क्यों नहीं चला, अब बताओ ना मेरे को। और ऐसे करते करते उनके मार्गदर्शन में हमने भी उनके जैसी एक्सपर्टीज हासिल कर ली, कि हमने जैसे ही लट्टू यूं फेंका, तो जब लट्टू अपने अपनी सही प्रकार से चलता है तो आपने देखा होगा उसकी इतनी फास्ट स्पीड होती है कि उसकी मूवमेंट भी नजर नहीं आती है, इतनी फास्ट है कि पता ही नहीं चल रहा है कि वो मूव कर रहा है, हालांकि वो मूव कर रहा है, गति है उसमें, पर इतनी फास्ट कि वो विजिबिलिटी नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उसकी गति क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, और जैसे जैसे कम हो रही है तो अभी वो विजिबिलिटी आती है कि इसकी, और फिर धीरे 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 लड़खड़ाना शुरू करता है, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते फ्लैट हो जाता है। तो हमारा लट्टू भी सतयुग से त्रेता एंड तक ऐसा चला, हमने कोई उपाय नहीं किया सोल कॉन्शियस बनने का, कोई प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन नेचुरल, क्योंकि फेंक दिया ना एक बार तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो नेचुरल रीति से हम सोल कॉन्शियस वाली ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे थे। लेकिन डेटा तो हम कलेक्ट कर रहे थे ना, इंद्रियां जो हमें मिली है उन इंद्रियों से हम कर क्या रहे थे, डेटा कलेक्शन तो हो रहा था ना। आंख क्या कलेक्ट करती है, दृश्य। कान क्या कलेक्ट करता है, आवाज। स्किन क्या कलेक्ट करती है, स्पर्श। अर्थात एक एक इंद्रिय का जो विषय है वो अपने विषय से संबंधित डेटा कलेक्ट कर रही थी, स्टोर कहां हो रहा था, स्टोर कहां हो रहा था, कहां आत्मा में, कहां। हाँ, हम क्या कहते हैं, पहला ही लेसन जब करते हैं, आत्मा के पास तीन फैकल्टी है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है। मन से हम सोचते हैं, फिर बुद्धि, मन से न सिर्फ सोचते हैं, ऑप्शन क्रिएट करते हैं, और वो ऑप्शन बुद्धि के सामने रख देते हैं। अब बुद्धि का काम है इसमें से चूज करके, फैसला करके बताओ कि किसको प्रैक्टिकल में लाना है। बुद्धि ने डिसीजन दिया, जो भी ऑप्शन चूज किया, जिसको भी साइन किया उसने, पेपर आगे सर का भी इसमें साइन है, इसको प्रैक्टिकल करना है अभी। तो इंद्रियों से हमने किया प्रैक्टिकल, और फिर हम क्या कहते हैं, इंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम जो कुछ करते हैं उसकी छाप आत्मा पर पड़ती है। ये भी बताते हैं, नहीं बताते हैं, इंद्रिय की, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किया उसकी छाप इंद्रियों पर पड़ती है। तो ऐसी कितनी छाप आत्मा के ऊपर पड़ी होगी। तो ये चुनरिया कौन सी है, हमें बस समझना वो है। तो हम एक शब्द यूज करते हैं मन, फिर क्लासेस में कभी कभी आप सुनते होंगे हमारा भीतरी मन, या फिर कहेंगे एक बाह्य मन और एक आंतरिक मन। या फिर कहेंगे कॉन्शियस माइंड या फिर कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड, या कहेंगे न मन में था न चित्त में था। चित्त क्या है? चित्त क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। तो ये संस्कार किसके ऊपर जाके पड़े, हम यही बोलते हैं ना, कुछ भी बातें बाबा मुरलियों में क्या कहते, सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। पॉसिबल है? बाबा कह रहा है तो पॉसिबल होगा, पर क्या मैकेनिज्म है इसका कि सुने भी फिर भी नहीं सुने, देखे भी फिर भी नहीं देखे। कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा होगा? चाय पीते पीते चाय गिर गई, लेकिन चाय का डब्बा यहाँ परमानेंट नहीं रहना चाहिए, तो क्या मैकेनिज्म यूज करते? अब भी जाओ, अब भी धुलाई करो। अब भी चाय गिरी है पर उस कपड़े में एब्सॉर्ब नहीं हुई है, और एब्सॉर्ब नहीं हुई है माना अभी कहीं एकदम से चिपक नहीं गई है वो। लेकिन अगर अब भी नहीं धोएंगे तो एब्सॉर्ब होती जाएंगी, कपड़े के तंतु उसको अपने भीतर तक समा लेंगे, और बाद में आप धोने जाएंगे तो नहीं निकलेगा, बाद में नहीं निकलेगा। मोबाइल में आपको व्हाट्सएप मैसेज एसएमएस किसी को भेजना है, आप टाइप करते हैं, सेंड बटन दबाया तो गया, और सेंड बटन नहीं दबाया तो डिलीट हो जाएगा ना अपने आप। पर टाइप तो किया था पर अंदर स्टोर नहीं हुआ ना, इसको बोलते हैं देखते हुए भी लिखते हुए भी नहीं लिखा, लिखते हुए भी नहीं लिखो, यही कहेंगे ना इसको। लिखा तो था फिर भी नहीं लिखा, मतलब सेव नहीं हुआ। हम कई बार बोलते हैं ना, आप तो उस समय टाइप कर रहे थे ना, अरे हाँ मैंने टाइप तो किया था ना, पर किसी और का फोन आ गया ना, मैं सेव बटन दबाना भूल गया। बोलते हैं नहीं बोलते हम ऐसे? तो ऐसे ही देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। स्क्रीन पर आई है बात, लेकिन अभी डिस्क पे, हार्ड डिस्क में नहीं जाने दो उसको अंदर, डिस्क में ही जाके सेव होगा ना अंदर। कहां से? स्टोरेज एरिया माना क्या, वो पेन ड्राइव के रूप में हो सकता है, एक्सटर्नल डिस्क हो सकती है, इंटरनल डिस्क हो सकती है, मतलब कोई स्टोरेज एरिया चाहिए ना जहां जाकर ये बैठेगा। तो हम जो इंद्रियों के माध्यम से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कहां जा रहा है? स्टोरेज एरिया, सबकॉन्शियस माइंड। तो मन और चित्त सिक्के के, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। अगर मैं ऐसा सिक्का पकड़ूं, एक साइड में चित्र दिखेगा, एक साइड में अंक दिखेगा, ऐसा ही होता है ना। तो चित्त किसको कहते हैं? सिक्के में भी चित्त और पट होती है ना। कई बार कुछ गेम खेलना होता है तो क्या करते हैं, टॉस करते हैं और उसमें बोलते हैं चित पट, जिसने जो बोला उसके अनुसार आया तो वो विनर, मतलब वो शुरुआत करेगा, जीता वो। तो चित्त किसको कहते हैं? जहां फोटो होती है। और पट किसको कहते हैं? जहां अंक होता है। स्कूल में जब पढ़ते थे बोर्ड को क्या बोलते थे? श्याम पट। परमानेंट रहता है उस पट में, कभी कुछ लिखा फिर मिटाया, लिखा फिर मिटाया। परमानेंट कहां होता है? हमारे डायरियों में। समझ में आ रही बात? तो मन है पट, वो है स्क्रीन, वो है स्लेट, लेकिन चित्त है जो हम डायरियों में लिख लेते हैं कि आज सर ने ये लेसन पढ़ाया। वहां से तो फिर मिटा भी दिया, वो पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि बोर्ड तो बहुत छोटा होता है, कितनी बार मिटाते रहता है, और हम तो कापियां भरते जाते हैं, करते हैं ना ऐसे, क्योंकि वो मेरे पास स्टोर रहना चाहिए। तो अंदर भी ऐसी व्यवस्था है, स्क्रीन पे आएगा आपका काम है इसको मिट, काम की है तो रखो और नहीं है तो, इसलिए वो बताते ना सुकरात ट्रिपल टेस्ट करता था, फिल्टर टेस्ट। कोई उसको किसी की कहानी सुना है, फलाने मेरे इधर आओ इधर आओ, फला व्यक्ति ना आपके लिए कुछ कह रहा था, मुझे आपके पास सुनाने के लिए कुछ है, रुको, आप जो मुझे बताने जा रहे हो ये सही है या गलत है। ऐसी ट्रिपल टेस्ट ना, उसकी लंबाई में नहीं जाती कहानी, पता है मतलब चेकिंग करो, काम की चीज है तो अंदर जाने दो, वरना स्क्रीन पर से ही उसको डिलीट मार दो। लेकिन हमने किया ऐसा कभी? वो तो बाबा अभी सिखा रहा है, वरना तो हमने क्या कहा, हमारे जीवन में घटनाएं घटी, मैं तो इसको जीवन भर नहीं भूलने वाली हूँ, 7 जन्म तक नहीं इसको मैं छोड़ने वाली हूँ, मतलब हार्ड डिस्क में पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर भी बना के रखा कि दूसरा भी कोई डिलीट नहीं करे कि कहीं मेरा फोल्डर किसी के हाथ में लग गया वो कहीं डिलीट ना कर दे, इसलिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देता हूं। तो ऐसा हमने तो सत्युग में और त्रेता युग में, चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सोल कॉन्शियस था तो नेगेटिविटी नहीं थी हमारे लाइफ में, ये काम क्रोध लोभ वो नहीं थे, लेकिन डेटा तो कलेक्ट हो रहा था ना अंदर। तो उस डेटा कलेक्शन से क्या हो रहा था, ये चित्त, चित्त बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि उस चित्त, ये चित्त किसके चारों ओर है, आत्मा के, कि उसमें आत्मा का प्रकाश आवागमन करके बाहर आ जाता है, इतना ट्रांसपेरेंट कि आत्मा बिल्कुल जैसी है वैसी उस चित्त से झांकने पर दिखाई देती है, इतना ट्रांसपेरेंट चित्त होता है। कब? जब हम पहली बार इस धरती के रंगमंच पर खेलने के लिए आते हैं। वैसे भी देखो रोज स्नान करके जब हम घर से बाहर जाते हैं तो 100% साफ कपड़ा होता है ना, स्नान करके आप कौन सा वस्त्र पहनेंगे, मैला वाला नहीं, लेकिन शाम होते होते तो बस हमारा भी वो चित्त रूपी चुनरिया, चित्त रूपी चुनरिया पर डेटा भी कलेक्ट होता गया तो उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती गई, और चूंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती गई इसलिए जिस इंटेंसिटी से आत्मा की किरणें, आत्मा के वाइब्रेशन चित्त को क्रॉस करके आने चाहिए थे अभी, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिसको ही कहा सोल कॉन्शियस स्टेज डेफिनेटली है वहां पर, परंतु उतरती कला वाली सोल कॉन्शियस स्टेज है, और धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी कम होते होते एक क्षण ऐसा आया कि अब वो आत्मा की किरण को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और तब कहा नया, फिर ये दिखने लग गया, क्योंकि वो नहीं दिखा तो दूसरी तरफ नजर जाएगी ना फिर तो। तो फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बॉडी कॉन्शियस वाला यूज किया, और वहां से बाबा कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जागा, वहां से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो अब हमें पता चला कि मेरी चुनरी वहां पे ट्रांसपेरेंसी कम हुई है दो युगों में, लेकिन द्वापर के बाद ट्रांसपेरेंसी जो कम हुई है उसके ऊपर अभी मैल की परतें चढ़ रही है, क्योंकि अब जो हम कर्म कर रहे हैं वो कौन से आधार से कर रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस के आधार से कर रहे हैं, ये सारा मैलापन उसके ऊपर चढ़ते जा रहा है। और कलयुग एंड तक आते आते कितनी मैली हो गई कि अब तो धोने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अब इतनी मैली हो गई है न घर के रहे न घाट के रहे। उसके साथ कनेक्शन ही टूट गया, उसके साथ दूरी हो गई। यही तो शिकायत है हमको। योग लगाते तो है बहन जी, लेकिन बाबा जो कहते हैं निरंतर योग, वो स्थिति नहीं बनती है। योग तो लगाते हैं बहन जी, पर वो चिंतन में ही समय निकल जाता है, वो अतीन्द्रिय सुख की भासना ही नहीं होती है। और कब लाल लाइट सफेद लाइट में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। यही शिकायतें हैं ना आज दिन तक, भले हम कितने ही वर्षों के बाबा के बच्चे बन गए हो, है या नहीं है? तो ये स्पष्ट है चुनरिया मैली है, और इस चुनरिया को धोने का काम करना है। तभी कहा मैली किससे हुई थी, पहले पता करना पड़ेगा। चुनरिया है कौन सी वो पता करना पड़ेगा। तो अभी चुनरिया भी समझ में आ गई, मैली किससे हुई है वो भी पता चल गया, और मैली होने की रिजल्ट क्या है वो भी पता चल गया, और वो जो उसके रिजल्ट है, हम उस रिजल्ट से हमारी सुकून जीवन की चली गई है। हमारे जीवन की जो चैन की बंसी बचनी चाहिए थी हमारे जीवन में, वो चैन की बंसी नहीं होकर सारा समय हमारे जीवन में क्या है, बेचैनी है। और इसलिए मुझे इस चुनरिया को साफ करना ही पड़ेगा। तो साफ करने के लिए आबू में शिव साजन आए हैं, और उस आबू में शिव साजन साफ करने, तो धोबी के पास भट्टी होती है ना लॉन्ड्री मैन के पास क्या रहती है, भट्टी रहती है ना। तो ये शिव साजन के पास भी भट्टी है, भट्टी करने आए हो ना। और भट्टी माना ही क्या, पकना। चूना भट्टी हो, चाहे ईटा भट्टी हो, चाहे धोबी की भट्टी हो, चाहे बेकरी की भट्टी हो, सब में एक ही प्रिंसिपल काम करता है, हाई टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है। और उस हाई टेम्परेचर, शायद प्रेशर भी करते होंगे, नो आइडिया, इतना डिटेल में नहीं जाते, वो क्रिएट करके जिस चीज में परिवर्तन लाना है, उस चीज को उस हाई टेम्परेचर वाली भट्टी में और फिर बाद में एक निश्चित जो भी समय है फिर उसमें से निकालो, तो जो मनचाहा रिजल्ट के रूप में हम उसको देखना चाहते थे वैसा हमें वो मिलता है। अब योग भट्टी में क्या करेंगे अच्छा भट्टी में भी जैसे समझो, क्योंकि शिव साजन धोने के लिए आया है ना अबू में, तो हम बाकी भट्टी छोड़ के हम लॉन्ड्रीमैन की भट्टी को पकड़ते हैं, धोबी की भट्टी को। बाबा कहते हैं मैं धोबी हूं, तो धोबी की भट्टी में भी क्या होता है, कपड़े पकते हैं। अब कपड़ा कितना मैला है उस पर डिपेंड करेगा कि ये टेम्परेचर उसके लिए ठीक था, इसके लिए और भी अच्छा। ये डिटर्जेंट डालना था या कोई और डिटर्जेंट, ये सब सोचना पड़ता है ना। देखो एक कपड़ा होता है डस्टिंग करने का, एक कपड़ा होता है पोछा लगाने का, और एक कपड़ा होता है किचन में तेल घी हल्दी मिर्ची सब लगता है कपड़े को, वो होता है। अब जब इस तीनों को सफाई करने की बात आएगी, सेम प्रोसेस में साफ हो जाएंगे तीन। डस्टिंग वाला थोड़ा सा पानी में जाके यूं हो गया, साफ हो गया। पोछे वाले को थोड़ा सा तो डिटर्जेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, एब्सॉर्ब कर लिया है। और जो किचन वाला तेल वाला कपड़ा, गरम पानी फिर सोडा उसके बाद सट के बहुत कुछ करना पड़ता है ना, तो हमें अपने से पूछना है कि मेरी चुनरिया कितनी गंदी है, और उस अनुसार मुझे कितना भट्टी में पकने की आवश्यकता है, कितना ज्ञान को बार बार बुद्धि में इमर्ज करके जीवन में जो बातें आ रही हैं, हर घड़ी मुझे ज्ञान को इमर्ज कर करके उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई कर करके अभी तक के जो दाग लगे ठीक है उसको तो धोना है, अब और तो नहीं लगे, इतना तो अटेंशन हम रख सकते हैं अभी कि चलो अनजाने में कपड़ा चुनरिया मैली हो गई, क्योंकि बाबा कहता है सृष्टि का खेल ऐसा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर उसकी बेचैनी तो हम ही झेल रहे हैं ना, और इसलिए फिर बाबा आता है और फिर सारा सीक्रेट खोलता है कि क्यों तुम्हारी बेचैनी है, वो सारा ज्ञान के माध्यम से क्लियर करके कहता है ठीक है अब इसको धोना पड़ेगा, लेकिन अब और मत चढ़ाओ। तो दो काम करने हैं, एक तो अलर्ट रहना है कि अब और दाग धब्बे ना लगे, जिसको कल दीदी ने बहुत सुंदर रीति से, डॉक्टर निर्मला दीदी से जब हमने क्वेश्चन किए संस्कार मिलन के ऊपर, बार बार दीदी के जो भी एग्जांपल्स दिए, जो भी बातें कही, उसका एसेंस यही था, ज्ञान की एप्लीकेशन करो, फॉरगेट एंड फॉरगिव करो, अपने को ही मोल्ड करो, यही था पूरा सारांश। तो ये भट्टी में बैठकर क्यों एकांत का समय दिया जाता है भट्टी में, क्यों हमने जानबूझकर ऐसे स्लॉट रखे, वरना तो होता क्या है, आप लोगों के मन में होता है कि मैं फला स्पीकर को भी सुनूं, मैं फला को भी सुनूं, मैं फला को भी सुनूं, मैं फला के दो लेक्चर सुनूं, मैं फला के तीन लेक्चर सुनूं, सुन सुन के अगर एप्लीकेशन ही नहीं किया, सिर्फ सुनने का काम तो हमने कोरोना काल में बहुत ज्यादा कर लिया है, टू मच, अति भी हो गई अगर एक तरीके से कहें तो, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, परंतु बात है उस साजन के साथ चलने के लिए मुझ सजनी की चुनरिया साफ हुई है या नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान भी अगर सुन लिया तो वह साजन ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी चुनरिया साफ नहीं हुई है, पर तुमने सबसे ज्यादा ज्ञान सुना था इसलिए तुम मेरे बाजू में बैठोगी, नहीं। मेरे बाजू में तो वो रहेगा जो मेरे जैसा है, जो बेदाग है। दाग वाले, क्योंकि बेशक घर जो भी चलेंगे सबके दाग धर्मराजपुरी क्रॉस करते हुए जाएंगे, लेकिन लेकिन अंतर क्या होगा? जब हम फोटो खींचते हैं ना, तो फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज। हम स्माइल करते हैं क्योंकि फोटो एक परमानेंट यादगार है ना, तो अच्छा पोज दिखना चाहिए। लेकिन जिस समय हमने स्माइल किया, अभी वो तो सेटिंग ही कर रहा था अपनी, और हमने सोचा वो क्लिक हो गया ना, अभी बाजू वाले ने धक्के दिया, क्या कर रहे हो, उसने उस समय क्लिक किया। उस समय क्लिक किया तो फोटो कैसे आएगी, कैसे आएगी? आप कहेंगे मैंने तो स्माइल किया था, पर फोटो में स्माइल नहीं है, क्योंकि स्माइल आपने बेशक किया था, लेकिन जिस समय क्लिक हुआ था उसके पहले कर लिया था, बाद में नहीं किया था। मतलब वो मेंटेन नहीं रखी थी आपने अपनी स्थिति। तो जो क्लिक करते समय आपका पोज था वही फोटो में आ गया। तो जब धर्मराजपुरी से हम अपनी चुनरिया की सटकाई करवाएंगे सपोज, तो उस समय जब सटके लगेंगे हमारी मेंटल स्टेज खुशनुमा होगी? सोचो जरा। कई बार हम इसे टाल देते हैं, कोई बात नहीं धर्मराजपुरी से क्रॉस कर लेंगे, सबने तो क्रॉस करना, सिर्फ आठ ही तो रतन पास विधान है, बाकी सबने तो पर सबके सटके अलग होंगे। आपको थोड़ा सा सटका लगे तो शायद स्माइल नहीं बिगड़ेगी, लेकिन ज्यादा सटका लगे तो बिगड़ेगी या नहीं बिगड़ेगी? तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, सब कुछ उसके लिए नहीं छोड़ देना है कि धर्मराजपुरी में खा लेंगे सजा, नहीं, क्योंकि वहां खाएंगे बाबा ने बहुत क्लियर कह दिया है, अंत मति सो गति। और आज ही सुन लिया, बच्चे सिर बन गए, ऊंच पद मिल गया, कोई गारंटी नहीं है। फिर तो बाबा ने नए नए नाम बोल दिए, उससे तो अच्छा प्रजा है, उससे तो अच्छा प्रजा है, क्या बन जाएंगे? दास दासी। क्योंकि सदा उदास रहे ना, और क्यों उदास रहे? चुनरिया को साफ ही नहीं किया, और वहां जब धर्मराजपुरी को क्रॉस किया तो सफरिंग सफरिंग सफरिंग, अंतमति वही रह गई मेरी। तो ये भट्टी में इसलिए एकांत का समय दिया गया था। हम जानते हैं कि आपके मन में था हमें फला फला स्पीकर और मिले और क्लासेस हो, लेकिन पहले ही हमने कह दिया एग्जाम बहुत करीब है, सिलेबस पुराना वाला ही है जो सेशन के शुरुआत में हम पढ़ते हैं ना साल के। तो जब से हम ज्ञान में आए हैं जो सिलेबस हमको दिया गया अभी भी वही सिलेबस है, पाठ्यक्रम वही है, अभी जरूरत है उस पाठ्यक्रम की खुद को घुट्टी पिलाना, और वो घुट्टी मात्र सुनने से नहीं तैयार होती। क्या कहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, और जितना ज्यादा घोटेंगे, वो शिवरात्रि की बात है, हमने कहा ना शिवरात्रि, शिवरात्रि में क्या करते हैं, वो भांग घोटते हैं। तो सिर्फ घोटने की बात नहीं है, फिर कहते हैं जितना ऊपर से ऐसे नीचे, मतलब एक ग्लास नीचे और दूसरा ग्लास, और जितना ऊपर से उसको छोड़ेंगे उतना ज्यादा उसमें नशा चढ़ता है। तो क्या करना है वो स्वयं, क्योंकि ग्लास तो आपके हाथ में आ गया है, घुटना खुदने हैं, फिर ग्लास में भर लेना है और खुद ही उसको फिर क्या करना है, ये सब काम खुद को करना है। जब हम सुन रहे हैं कोई और घोट के मेरे लिए लाया है, उतना नशा नहीं चढ़ेगा। आप याद करो वो दिन हमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है टेंथ तक, इस कारण से वो इंग्लिश का भी सब्जेक्ट हिंदी में ही समझाते थे, मतलब इंग्लिश पढ़ा लेकिन जब समझाने की बारी आई तो हिंदी में। और तो फिर क्या हुआ उससे, हम समझ तो गए उस इंग्लिश को, लेकिन बाद में जब कोई इंग्लिश में मेरे से बात कर रहा है, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बोलने की कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, सिर्फ सिर्फ सुनने की। प्रैक्टिकल फील्ड में क्या होगा, आप पास होंगे फिर? अगर आपका पूरा फील्ड सपोज इंग्लिश का है, आपको अपने मुख से बोलना ही पड़ेगा। और बोलने में क्या होता है, शुरू में टूटा फूटा ही निकलेगा, और उसमें हमको शर्म नहीं करना है, क्यों, लर्निंग स्टेज ऐसी ही होती है, बच्चा चलना सीख रहा है, गिरेगा ही गिरेगा। पर वो सोचे मैं गिर जाता हूँ, चोट लग जाती है, सब फिर हंसते हैं, मैं नहीं चलूंगा, तो जीवन भर ऐसा ही रह जाएगा वो। और इसलिए जो निर्भय होकर, होने तो गलतियां होती है मेरे से बोलने में, तो हम जब बोलेंगे तो हम, क्योंकि हमने इंग्लिश समझी हुई जरूर है पर बोलने की प्रैक्टिस नहीं, तो महसूस होता है जब हम बोलते हैं तो हम खुद ही रियलाइज करते हैं मैंने गलत बोला, खुद ही रियलाइज करते हैं। और खुद ही रोज रोज ऐसे रियलाइज करते करते, हर बार हम जब नेक्स्ट बोलते, हाँ अगली बार ऐसे नहीं बोलूंगी, अगली बार मैं ऐसे बोलूंगी, तब जाके ना सिर्फ इंग्लिश, एक बच्चा भी ऐसे ही सीख रहा है ना, ऐसे ही खुद को कमेंट्री देना सीखो। अपने अंदर से जब होगा, मन और बुद्धि की ट्यूनिंग होगी। यहां फिर भी मन और बुद्धि अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। खुद करेंगे, खुद उसमें मगन होंगे, तो आत्मिक स्थिति से दूर नहीं होंगे, और आत्मिक स्थिति होगी, परमात्मा से कनेक्ट हो जाना इजी होगा। और जब परमात्मा से कनेक्ट होना इजी हो जाएगा, तो अटेंशन तो हमने रख दिया कि अभी धब्बे नहीं लगाएंगे, पर जो लग गए हैं धब्बे, वो जब उससे कनेक्ट होंगे, वो परम धाम घर में तो हाई, जैसे कहा ना भट्टी मना हाई टेम्परेचर, वहां पे किसका हाई टेम्परेचर है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन बहुत ही हाई क्वालिटी के। हम भले कहते हैं कि इस कैंपस में, कैंपस से बाहर चले जाओ, वहां के वाइब्रेशन और यहाँ के वाइब्रेशन में बहुत अंतर, लेकिन यहां और वहां को कंपेयर करना हो तो क्या कहोगे, वहां की और ज्यादा पावरफुल, क्यों, क्योंकि ये तो भौतिक दुनिया के अंदर है, ये अभी तो भौतिकता का थोड़ा थोड़ा सेक है, अभी यहां नॉन बीकेस भी आते जाते हैं, उनके वाइब्रेशन में मिक्स होते हैं, बावजूद उसके हम यहां क्या महसूस कर रहे हैं, हाईली चार्ज्ड। अब जरा सोचो, उधर जाके बैठेंगे, वो हमारी भट्टी है, बैठ जाओ सूर्य के सामने, आजकल सूर्य स्नान को महत्व दिया जा रहा है, तो सूर्य में, जहां से सूर्य की रोशनी आ रही है उस दिशा में बैठना पड़ता है, अब बैठ जाते हो वहां पे, फिर एक एक बार, हर बार थोड़ी नोटिस करते हो किरण आ रही है, किरण आ रही है, किरण आ रही है, लेकिन चूंकि आप वहां बैठ गए हो, आपको किरण आती है और आपको गर्माइश का अनुभव होता है। आपके अंदर जो वायरस, बैक्टीरिया, कफ आदि है नाक में, तो आपको महसूस होता है पिघल रहा है, महसूस होता है। तो एकांत के बिना परमधाम घर में कैसे बैठेंगे बोलो। और इसलिए चाहे जितना भी आपने यह अनुभव किया, जितना भी लिमिटेड टाइम था, सबने बेशक अपने अपने रीति से भट्टी का पूरा पूरा सफल यूज किया है टाइम का, नो डाउट। लेकिन यहां से एक संकल्प करके अवश्य जाना कि मुझे स्वयं के लिए स्वयं ही, जैसे आपको कहा गया कि 21 दिन की भट्टी का प्लान तो आपको मिल चुका है, लेकिन हम इस बात पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज डालते हैं, एक एक दिन पूरा मौन रहें। पॉसिबल नहीं है, 21 दिन कारोबार है, इसलिए सप्ताह में एक बार निकालो, या 15 दिन में एक बार निकालो, या हफ्ते में एक दिन निकालो, पूरा मौन। और मौन की डेफिनेशन हमने पहले वाले दिन में बता दी है कि बात करनी है, सुनना है, बात करना है, पर बाहर वाली दुनिया से नहीं, अंतर जगत से। मेरा जो ऊपर धाम है वहां जाके बैठ जाऊं, उस ज्ञान सूर्य के उस ताप से, उसकी शीतल, वो शीतल भी है। और ताप हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अग्नि जब कहेंगे तो ताप, और अग्नि क्यों शब्द यूज करते हैं, अग्नि माना ही जो सब कुछ जला देती है और फिर प्योर फॉर्म रह जाता है। सोने को भी क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर, और उसके द्वारा इम्प्यूरिटी अलग और प्योर सोना अलग। तो ये है सच, मैं हूं सजनी शिव साजन की, तो मुझे साजन जैसा सलोना बनना पड़ेगा। इस चुनरिया को 16 कला वाला जो चंद्रमा होता है, जो पूर्ण निखार में होता है, ऐसी अपनी चुनरिया को, चित्त रूपी चुनरिया को बनाएंगे तो अवश्य ही उस साजन की वामांगिनी है ना, सजनी क्या होती है, वामांगिनी होती है, अर्धांगिनी होती है, बाजू में बैठने का पूरा अधिकार होता है। तो जब बाजू में बैठेंगे तो सारा मार्गदर्शन तो अपने आप मिलता ही जाएगा ना, तो उसके साथ चलेंगे। घराती बराती बनने दो दूसरों को, हम क्यों बनेंगे, हम तो क्या बनेंगे, शिव की सच्ची सच्ची सजनिया। ओम शांति।
ओम शांति। हमारी इंदिरा बहन ने तो सभी का परिचय कराया था, लेकिन इनकी क्लास ही आज परिचय रही। हम शुरुआत में सोच रहे थे आपका परिचय हम कौन कराएगा, आपकी क्लास से हम सबको परिचय के रूप में बड़े प्यार से सबको साजन की सजनिया बना करके, आज लास्ट दिन है ना, तो सजनी बना करके पूरा शोला श्रृंगार से श्रृंगारित करके भेज रही है। शुरू से लेकर जिस दिन भट्टी की शुरुआत हुई, तब से लेकर हम सबको समय प्रति समय गाइडेंस दे करके, मैं समझती इंदिरा बहन एक क्लास आपकी पहले ही होनी चाहिए था, क्योंकि पहला ही सटका लग जाता ना भट्टी की शुरुआत, तो हम 3 दिन के अंदर देख लेते हैं डस्टिंग वाला थे, किचन वाले थे।
हर बार ऐसा ही होता है, हर भट्टी में हम हमेशा लास्ट में ही रखते हैं अपनी क्लास, और हर बार यही कमेंट आता है
लेकिन हम फिर भी पहले नहीं रखते हैं, उसका कारण बताती हूँ। इंसान के हाथ से जब निकल जाता है ना, तब रियलाइजेशन होती है। इसीलिए पहले इससे रियलाइजेशन होता है ना, पहले का नहीं होती, लगता ये तो मधुबन में आए, क्या किसी से मिलेंगे नहीं, क्या बात नहीं करेंगे क्या।
भट्टी
नहीं हम क्यों कह रहे हैं कि
टेम्परेचर हो सकता है तो और बढ़ा लेते
नहीं, बेशक बहुत दिनों के बाद आते हैं सबसे तो अभी अगर एक दिन है ना, तो वही तो मैंने कहा अभी मौन को बढ़ाओ, क्योंकि मौन जितना बढ़ेगा अंदर क्या है वो क्लैरिटी दिखाई पड़ती है, अंतरात्मा आवाज देती है। अभी अंतरात्मा आवाज दे रही पे सुनाई कहाँ दे रहा, बाहर में मशगूल है। ठीक है,
बहुत बहुत आपका धन्यवाद, समय प्रति समय आपने इतना सुंदर कोऑर्डिनेट करके हमारे भट्टी को सफल बनाने में सुंदर डिजाइन, जो भी शुरू से लेकर अभी तक जो डिजाइन हुआ, तो हमारे इंदिरा बहन का विशेष सहयोग रहा और पूरा गाइडेंस दे करके हमको सबको एक सूत्र में बांधकर यहाँ के भट्टी के मूल्य के बारे में बताते हुए, सबको एक स्नेह के सूत्र में बांध करके बाबा के इस घर की अनुभूति कराने के लिए हम सभी दिल से दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे।